इप्सिता ने नंदिनी का कॉल काटते ही ध्रुव को ये संदेश भेजा। हेलो ध्रुव, फ्री हो? मुझे तुमसे बात करनी थी। ध्रुव ने तुरंत संदेश देखा और बिना सोचे समझे इप्सिता को कॉल कर दिया। इप्सिता ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो ध्रुव। ध्रुव ने कहा, क्या हुआ इप्सिता, इस समय तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? इप्सिता ने कहा, वो एक्चुअली शूट को लेकर तुमसे बात करनी थी। ध्रुव ने शूट का नाम सुनते ही उत्साह से कहा, क्या शूट? मतलब तुम शूट करने आ रही हो? बताओ कब आ रही हो, जिस वक्त बोलो मैं उस समय तैयार हो जाऊंगा। ध्रुव की खुशी देखकर इप्सिता मुस्कुराई, हाँ लेकिन हमारे पास ज्यादा समय नहीं होगा, तुम्हें पूरा फोटोशूट करने के लिए 2 से 2.5 घंटे ही मिल पाएंगे, वो भी परीक्षा खत्म होने के तुरंत बाद। इसलिए तुम अपना सारा सेटअप तैयार रखना, हम नंदिनी के साथ पहुंच जाएंगे, लोकेशन तुम हमें भेज देना। ध्रुव ने उत्साह से कहा, ओके ग्रेट, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा, थैंक यू सो मच। ईशु, तुम नहीं जानती तुमने मेरी कितनी बड़ी समस्या हल कर दी है। इप्सिता ने ध्रुव को इतना खुश देखकर कहा, ठीक है अभी हम परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं तो हम तुमसे कल मिलते हैं। इतना कहकर इप्सिता ने कॉल काट दिया और फोन साइड टेबल पर रखकर परीक्षा की तैयारी करने लगी। पढ़ते पढ़ते समय इतनी जल्दी बीत गया कि पता ही नहीं चला कब डिनर का समय हो गया। इप्सिता ने घड़ी देखी तो 9:30 बज रहे थे। इप्सिता ने कहा, अजीब बात है, अभिमन्यु ने आज हमें अभी तक डिनर के लिए नहीं बुलाया, ऐसे तो कभी इतनी देर नहीं होती, तो फिर आज क्या हो गया अभिमन्यु को, अपने काम की ही टेंशन है या फिर कोई और बात है? इप्सिता ने अपनी किताबें बंद की और कमरे से बाहर निकली। वो नीचे हॉल में आई, उसने देखा शांतिका की डाइनिंग टेबल के पास खड़ी थी। उन्होंने इप्सिता को देखते ही कहा, बहुरानी सा, आपका खाना लगा दूँ? इप्सिता ने मना करते हुए कहा, नहीं रुक जाइए, हम अभिमन्यु के साथ खा लेंगे, उन्हें आने दीजिए। शांति काकी ने कहा, लेकिन कुंवरसा ने तो खाना अपने कमरे में ही मंगवा लिया है और अब तक तो वो खा भी चुके होंगे। ये सुनकर इप्सिता को अजीब लगा, अभिमन्यु ने खाना खा लिया था, वो भी अपने कमरे में मंगवाकर। इप्सिता को इस तरह सोच में डूबा देखकर शांति काकी ने कहा, क्या हुआ बहुरानी सा, क्या सोचने लगी हैं, आपका खाना यहीं लगा दूँ या अपने कमरे में खाएंगी? इप्सिता ने सोचते हुए कहा, हाँ हम यहाँ अकेले क्या करेंगे खाना खाकर, आप हमारा खाना हमारे कमरे में ही ले आइए। इतना कहकर इप्सिता चुपचाप अपने कमरे में आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद शांतिका की ट्रे में खाना लेकर आई और उसके कमरे के टेबल पर रखते हुए बोली, बहुरानी सा और कुछ चाहिए हो तो मुझे आवाज़ लगा दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। नहीं पहले ही मन नहीं है खाने का, इसीलिए इतना ही बहुत है। इतना कहकर इप्सिता खाना खाने लगी। उसके दिमाग में ये बात खटक रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या ऑफिस में किसी बात को लेकर अभिमन्यु इतना ज़्यादा टेंशन में है कि उन्होंने साथ में खाना खाना ही अनदेखा कर दिया? इप्सिता सोचते हुए खाना खा रही थी। उसने खाना जैसे ही खत्म किया उसके दिमाग में बार बार अभिमन्यु का ही ख्याल आ रहा था, लेकिन उसने खुद को समझाया, अभी हमें परीक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अभिमन्यु हो सकता है काम की वजह से टेंशन में हो और उनका काम हल्का होगा तो शायद वो पहले की तरह सामान्य व्यवहार करने लगेंगे। इतना कहकर इप्सिता चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसने थोड़ी देर और अपने नोट्स पढ़े, उसके बाद सब कुछ समेटकर चुपचाप सो गई, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो अपनी नींद पूरी नहीं करेगी तो ठीक से परीक्षा नहीं दे पाएगी, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी सो गई। अगले दिन सुबह इप्सिता जल्दी उठी और फटाफट तैयार होकर सीधे कमरे से बाहर निकली। वो डाइनिंग टेबल पर आई, उसने देखा अभिमन्यु पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोली, गुड मॉर्निंग। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर कहा, ओ हो गई आपकी तैयारी? ये सवाल सुनकर इप्सिता को लगा कि शायद काम की टेंशन की वजह से ही अभिमन्यु ऐसा व्यवहार कर रहा था। वो उससे बात करते हुए नाश्ता करने लगी और दोनों साथ ही निकले। इप्सिता ने उम्मीद से पूछा, आज आप हमें छोड़ने चल रहे हैं या फिर आपको आज भी काम है एक्स्ट्रा? अभिमन्यु ने कहा, नहीं आज हम आपको छोड़ने चलेंगे। इतना सुनकर इप्सिता कुछ नहीं बोली, लेकिन वो अभिमन्यु के साथ जाने के लिए मन ही मन खुश थी। लेकिन फिर अचानक उसे ध्रुव और फोटोशूट वाली बात याद आ गई और वो टेंशन में आ गई। अभिमन्यु ने उसे टेंशन में देख लिया। नाश्ता खत्म करते हुए अभिमन्यु ने पूछा, क्या हुआ आप अचानक से थोड़ी परेशान लगने लगी हैं, कोई समस्या है क्या? इप्सिता खड़े होते हुए बोली, नहीं नहीं वो बस परीक्षा के बारे में सोच रही थी। इप्सिता ने झूठा बहाना बना दिया और अपना सारा सामान लेकर अभिमन्यु से पहले ही बाहर निकल आई। फोटोशूट वाली बात याद आने की वजह से इप्सिता पूरे रास्ते शांत बैठी रही। उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि वो अभिमन्यु से क्या बहाना बनाएगी, क्योंकि उसे पता था कि कल की तरह आज भी परीक्षा जैसे ही खत्म होगी अभिमन्यु उसे लेने के लिए आ जाएगा। उसने मन ही मन सोचा, हमें कुछ तो बहाना बनाना होगा कि आज अभिमन्यु हमें 2 घंटे बाद लेने आए। कॉलेज के पास आकर इप्सिता ने कार से उतरने से कहा, अभिमन्यु आज हमारा परीक्षा खत्म होने के बाद हम सोच रहे थे कि हम थोड़ा समय नंदिनी के साथ बिताएं, अपने हॉस्टल में हम रात नहीं रुकेंगे, बस परीक्षा के 2-3 घंटे तक हम नंदिनी के साथ रहेंगे और वहाँ की बाकी दोस्तों से भी मिलेंगे। नंदिनी ने बताया सब हमारे बारे में पूछ रही थी। अभिमन्यु ने पूछा, अच्छा आज अचानक से? वैसे आप नंदिनी से तो रोज ही मिलती हैं और आपकी बाकी दोस्त भी हैं, हमें तो पता ही नहीं था। ये सुनकर इप्सिता हैरान रह गई, क्योंकि उसने अभिमन्यु को ये नहीं बताया था कि नंदिनी के अलावा उसके ज्यादा दोस्त नहीं हैं। लेकिन अभिमन्यु को ये बात पता कैसे चली? इप्सिता अपनी घबराहट छुपाते हुए बोली, हाँ वो सब क्लासमेट हैं और वहाँ हॉस्टल में साथ में रहने वाली लड़कियाँ हैं, तो अभी परीक्षा में 3 दिन का समय है, तो हमें अगली परीक्षा की इतनी टेंशन नहीं है, इसीलिए हमने सोचा आज थोड़ा समय उनके साथ बिता लेते हैं। अभिमन्यु ने टेंशन में पूछा, अच्छा तो किस समय तक आप वहाँ अपने हॉस्टल में रहने का सोच रही हैं? इप्सिता ने समय जोड़ते हुए कहा, हाँ वो 2 बजे तो हमारा परीक्षा ही खत्म होगा और फिर उसके बाद 2-3 घंटे, तो कम से कम 6 बजे तक तो हम यहाँ रहना चाहती हैं, उसके बाद चाहे आप हमें लेने के लिए आ जाएं या फिर ड्राइवर को भेज दीजिएगा, हम वापस आ जाएंगी। अभिमन्यु थोड़ा सोच में पड़ गया लेकिन फिर बोला, ठीक है हम कार भेज देंगे, लेकिन अगर आपको ज्यादा समय लगे तो आप हमें कॉल करके बता दीजिएगा। अभिमन्यु की बात मानते ही इप्सिता खुश हो गई, थैंक यू सो मच अभिमन्यु। वो इप्सिता को छोड़ने के लिए कार से बाहर निकल ही रहा था कि इप्सिता ने कहा, इट्स ओके हम चले जाएंगे। इतना कहकर इप्सिता ने अभिमन्यु को अलविदा कहा और कॉलेज के अंदर चली गई। अभिमन्यु इप्सिता को जाते हुए देख रहा था, उसने गहरी सांस ली और ड्राइवर से कहा, कंपनी साइट पर चलो। अभिमन्यु साइट पर चला गया और काम में व्यस्त हो गया। इधर इप्सिता ने अपना परीक्षा खत्म करते ही भागते हुए हॉल से बाहर निकली। नंदिनी ने उसे भागते हुए देखा, अरे रुक जा यार, मुझे बता तो दे कहाँ चलना है, ऐसे ही दौड़कर जाने का इरादा है क्या तेरा? इप्सिता ने कहा, हाँ ध्रुव ने हमें लोकेशन भेजी है, तुम जल्दी से टैक्सी करो, उसके बाद ही बैठकर बताते हैं, समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है। नंदिनी ने टैक्सी की और टैक्सी की सीट पर इप्सिता के बगल में बैठते ही पूछा, एक मिनट, तूने जीजू से क्या बहाना बनाया? नहीं तो वो अब तक तो तुझे लेने आ जाते या फिर उनका ड्राइवर कार लेकर आ जाता। इप्सिता थोड़ी घबराहट में बोली, हमने तो अभिमन्यु से यही कहा था कि हम तुम्हारे साथ और हॉस्टल में बाकी दोस्तों के साथ थोड़ा समय बिताना चाहते हैं, इसीलिए हमने उनसे 2 घंटे का समय ले लिया है। थैंक गॉड उनको पर हम पर शक नहीं हुआ और वो मान गए। नंदिनी ने शिकायत करते हुए कहा, मेरे भोले भाले जीजू को तूने बेवकूफ बनाया झूठ बोलकर।
इप्सिता ने आंखें घुमाते हुए कहा, हाँ अब और तू अपने जीजू का नाम लेते हुए मुझे ही दोषी महसूस करवा रही है। पहले ही मुझे बुरा लग रहा है कि मैंने उनसे झूठ बोला, लेकिन और कोई विकल्प कहाँ था मेरे पास, तुझे तो सब पता ही है। फिर भी, नंदिनी हंसते हुए बोली, अरे यार मैं ना तुझे इतनी टेंशन में नहीं देख पाती, बस इसीलिए तेरा मूड हल्का करने के लिए मजाक कर रही थी। वैसे सही किया तूने, आखिर ध्रुव भी तो बेचारा कितनी रिक्वेस्ट कर रहा था, इसी बहाने उसकी भी थोड़ी मदद हो जाएगी और तू भी आखिरी बार अपने सपने को जी लेगी। नंदिनी की बात सुनकर इप्सिता ने गहरी सांस ली और टैक्सी की खिड़की से बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों उस लोकेशन पर पहुंच गई जहां ध्रुव ने उसे बुलाया था। वहां पहुंचते ही इप्सिता ने देखा पूरा सेटअप तैयार था। एक ट्राइपॉड पर कैमरा सेट था, दूसरा DSLR कैमरा ध्रुव ने हाथ में पकड़ा हुआ था। सामने 2 बड़ी फोकस लाइट जल रही थी, पीछे हरे रंग के बड़े पर्दे लगे हुए थे। ध्रुव खड़ा हुआ था। इप्सिता ध्रुव के पास जाकर बोली, हाय ध्रुव, सब कुछ तैयार है ना? ध्रुव ने पीछे मुड़कर हाँ में सिर हिलाया, हाँ बिल्कुल, तुम जल्दी से बदल लो। अच्छा हुआ नंदिनी तुम भी आ गई, कृपया इशू को अच्छे से मेकअप कर दो, कृपया ज्यादा समय मत लेना। ध्रुव ने इप्सिता और नंदिनी को उनका परिधान देते हुए कहा, लो जल्दी जाओ इसे पहन कर आओ। इप्सिता सीधे वॉशरूम आई और कपड़े बदलने लगी। जैसे ही वो बदल कर निकली, नंदिनी ने उसका मेकअप करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में वो पूरी तैयार हो गई। क्रमशः, क्या लगता है आपको, अभिमन्यु पकड़ पाएगा इप्सिता का ये झूठ? क्या इप्सिता सफल हो पाएगी अपने इस फोटोशूट में? और इसके बाद क्या वो सच में अपने सपने को पूरी तरह से भूल जाएगी? और क्या सच में वो सिर्फ ध्रुव की मदद करने के लिए ही ये सब कर रही है?